मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही हो। सिवाय अंधेरे के मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी एक रोशनी ने मेरी आंखों पर प्रहार किया और इसी के साथ मेरी आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं गहरी नींद में थी और मेरे शरीर को किसी भारी पत्थर से बांधकर जकड़ लिया गया हो। पर जब धीरे धीरे मेरी पलकों ने खुलना शुरू किया, तब जाकर मेरा सामना रोशनी से हुआ। मैं धीरे धीरे अपनी आंखें फड़फड़ाते हुए बेहोशी की हालत से बाहर आने लगी। मैंने देखा कि मैं इस वक्त लेटी हुई थी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर छत नजर आ रही थी। छत पर सुंदर नक्काशियां बनी थीं और बीचों बीच शानदार झूमर लगा हुआ था। मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि मेरे शरीर पर वो भारीपन अभी भी महसूस हो रहा था। जब अरुणिमा बेहोशी की हालत से होश में आई, तो पहला विचार उसके मन में यही आया। लेकिन वो अपने विचारों में ही उलझी हुई थी, तभी उसने एक आवाज सुनी जिसने उसे होश में आने के साथ ही एक बार फिर से दहशत की दुनिया में धकेल दिया। तुम उठ गई जान, अब कैसा महसूस कर रही हो? अरुणिमा एकदम से घबरा गई। उसने अपना चेहरा घुमाकर देखा और उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। आस्तिक उसके बेड पर ही बैठा हुआ था, वो भी उसके बेहद करीब, इतने करीब कि वो उसकी सांसों को महसूस कर सकती थी। ये पहली बार था जब उसने आस्तिक को अपने इतने करीब देखा था। इसी के साथ उसका दिमाग उलझन से भर गया। तभी उसे याद आया कि वो तो जंगल में थी और आस्तिक उसके साथ डेड गेम खेल रहा था। लेकिन उसके बाद गोली चली और फिर वो भागते हुए किसी गड्ढे में घिर गई थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था, वो बेहोश हो गई थी। अब जब उसे होश आया तो उसने खुद को आस्तिक के साथ उसके कमरे में पाया। अरुणिमा को एक सेकंड नहीं लगा ये समझने में कि वो वापस उस बीस्ट की कैद में आ गई है। उसकी आज़ादी का एकमात्र जरिया जो उसने भागने के लिए चुना था, अब उसके हाथ से निकल चुका था। आस्तिक ने उसे एक बार फिर से अपनी कैद में ले लिया था। अरुणिमा आस्तिक को सामने देखकर घबरा गई थी। उसने डरते हुए खुद को बिस्तर से उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो कमर के बल बैठी, एक तेज दर्द ने उसे जकड़ लिया। वो दर्द से कराह उठी। उसने अपने बाजू को कसकर पकड़ लिया और उसका चेहरा दर्द से मुरझा गया। आस्तिक ने उसे देखते हुए कहा, किसने कहा तुम्हें हिलने के लिए? तुम्हें चोट लगी है, कुछ दिन आराम की जरूरत है। अरुणिमा ने घबराई हुई नजरों से अपने बाजू को देखा, जहां सफेद रंग की पट्टी बांधी हुई थी। उसे याद आया कि उसे गोली लगी थी, गोली उसे छू कर निकल गई थी। वो ये तो नहीं जान पाई कि गोली किसने चलाई, आस्तिक ने या उसके किसी आदमी ने। जो भी हो, लेकिन अरुणिमा पर गोली चली थी, वो भी इस तरह से जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जंगली जानवर हो। इंसान जानवरों का शिकार करता है ये तो उसने सुना था, लेकिन इंसानों का शिकार करते हुए उसने पहली बार देखा था। अरुणिमा की आंखों में हल्के आंसुओं की परत आ गईं। उसने आस्तिक को देखा, उसके चेहरे पर कुछ चिंता के भाव थे। अरुणिमा हैरान रह गई, उसे विश्वास नहीं हुआ कि आस्तिक जैसे इंसान के चेहरे पर उसके लिए चिंता हो सकती है। लेकिन उसे ये भी याद था कि उसे घायल करने वाला आस्तिक खुद ही था। अरुणिमा डरते हुए आस्तिक को देख रही थी। आस्तिक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी अरुणिमा ने कुछ महसूस किया। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा नीचे किया। उसी पल उसकी जान गले में अटक गई। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई और वो तेजी से सांस लेने लगी। इस वक्त कंबल उसकी कमर तक था। उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था, यहां तक कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कमर के नीचे भी कुछ नहीं पहना है। डर और घबराहट के मारे अरुणिमा ने जल्दी से कंबल को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और अपने सीने तक ढक लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इतनी ज्यादा घबरा गई कि उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। आस्तिक ने उसकी घबराहट को देखकर एक शैतानी मुस्कान दी और घिनौनी हंसी के साथ कहा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है जान, मैं तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा देख चुका हूँ। अरुणिमा ने घबराई नजरों से आस्तिक को देखा। आस्तिक उसकी हालत देखकर और जोर से हंसा, फिर उसके चेहरे के करीब आकर उसके कानों ने धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, और मानना पड़ेगा तुम एकदम हॉट और सेक्सी हो, परफेक्ट बॉडी। अरुणिमा ने कांपती आवाज में पूछा, मेरे कपड़े कहाँ गए और मेरे कपड़े किसने बदले? आस्तिक ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है ये करने की हिम्मत कौन करेगा? आस्तिक हंसते हुए अरुणिमा से दूर जाता है और बेड के दूसरे कोने पर जाकर बैठ जाता है। वो अब भी उसे हंसते हुए देख रहा था और उसके चेहरे की मुस्कान देखकर अरुणिमा का डर और गहरा होता जा रहा था। आस्तिक ने अपनी हंसी को धीमा करते हुए कहा, आज के लिए इतना काफी है, अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हारी नई डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करेगी, वो किसी भी पल यहाँ आ सकती है, उससे पहले कपड़े पहन लेना। आस्तिक की बात सुनकर अरुणिमा पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। नई डॉक्टर? उसके मन में सवाल उठने लगे, उसकी पुरानी डॉक्टर निशा, निशा के होते हुए नई डॉक्टर की क्या जरूरत? और इस ख्याल के साथ ही अरुणिमा की आंखें बड़ी हो गईं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। डॉक्टर निशा, उसने अरुणिमा की भागने में मदद की थी,
कहीं आस्तिक को इसके बारे में पता तो नहीं चल गया, कहीं उसने निशा को कुछ कर तो नहीं दिया। अगर ऐसा हुआ तो, ये सोचते ही अरुणिमा का दिल डर से भर गया। अरुणिमा ने जल्दी से कंबल को अपनी चारों तरफ लपेटा और घबराते हुए बोली, निशा कहाँ है? आस्तिक जो बेड से उठने ही वाला था अचानक पलटा और उसकी ओर देखा। उसकी चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आंखों में एक राज छिपा था। अरुणिमा ने उसकी आंखों की गहराई में छिपी बात को पहचान लिया और उसी पल एक अपराध बोध और निशा के लिए सहानुभूति उसके दिल में आ गई। निशा ने केवल उसकी मदद की थी, वो भी इंसानियत के नाते। अरुणिमा ने डरते हुए कहा, प्लीज निशा को चोट मत पहुंचाना, उसने कुछ नहीं किया है, उसके इसमें कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। अरुणिमा की बात सुनकर आस्तिक हंसता हुआ बेड से खड़ा हो गया। जब वो पूरी तरह खड़ा हुआ तो अरुणिमा की नजर उसके शरीर पर गई, उसकी आंखें शून्य हो गई। आस्तिक ने सिर्फ स्वेट पैंट पहना हुआ था और उसकी अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं था। अरुणिमा की नजरें उसके सीने पर बने ईगल टैटू पर अटक गईं। उसका टैटू उसके राइट शोल्डर से लेकर सीने तक फैला हुआ था। ये पहली बार था जब उसने आस्तिक को इस रूप में देखा। अरुणिमा की नजर धीरे धीरे उसके सिक्स पैक एब्स पर गई। वहां कमर के ऊपर एक ब्लैक डेविल का टैटू बना हुआ था। उसके टैटू इतने रियल लग रहे थे जैसे किसी पेंटिंग में जान डाल दी गई हो। आस्तिक ने उसकी नजरों को महसूस किया और मुस्कुराते हुए बेड से उतरकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। अरुणिमा की नजर इस बार उसकी पीठ पर गई। उसकी पूरी पीठ पर 10 सिर वाले रावण का 3D टैटू था। वो टैटू इतना भयानक और जीवंत लग रहा था जैसे रावण उसके अंदर से हंस रहा हो। अरुणिमा की आंखें ये सब देखते फटी रह गई। उसे आस्तिक के करीब आते हुए पता ही नहीं चला। आस्तिक झुककर उसके चेहरे के पास आया और धीमे स्वर में बोला, क्या बात है जान, तुम मेरे टैटू को इतनी गौर से क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें ये पसंद है? क्या इन्हें छूना चाहोगी? उसके शब्दों ने अरुणिमा को उसकी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। उसने डरते हुए कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम निशा को चोट मत पहुंचाओ, उसका इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दो, उसने वो सब मेरे कहने पर किया था।
आस्तिक सीधे खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ सामने बांधते हुए बोला, और तुम मुझे बताओगी कि मैं ऐसा क्यों ना करूं? उस डॉक्टर को जिंदा रखकर मुझे क्या फायदा होगा, जबकि मैं जानता हूं कि उसने तुम्हारी भागने में मदद की? वो डॉक्टर हमारी फैमिली ने तुम्हारे चेकअप के लिए रखी थी, लेकिन उसने तुम्हारी झूठी हेल्थ रिपोर्ट मुझे दी और तुम्हारी मदद की। ये सब मुझसे छुपाने का अंजाम तो भुगतना पड़ेगा ना? अरुणिमा घबरा जाती है और जल्दी से कहती है, नहीं आस्तिक, प्लीज उसे कुछ मत करना, उसने कुछ नहीं किया है, उसने जो कुछ भी किया है मेरे कहने पर किया है, और अगर इसके लिए किसी को सजा मिलनी चाहिए तो मुझे मिलनी चाहिए, प्लीज निशा को छोड़ दो, उसके हिसाब से कोई गलती नहीं है। अरुणिमा के लगभग गिरते हुए शब्दों को सुनकर आस्तिक ने हंसते हुए कहा, जान मुझे लगता है इन सब की वजह से तुम चीजें भूलने लगी हो। तुम भूल रही हो कि कल ही तो मैंने तुम्हें सजा दी थी, याद है वो डेथ गेम? वो तुम्हारी सजा ही तो थी। मैंने तुम्हें अपने तरीके से सजा दी और मुझे तुम्हारे साथ वो गेम खेलने में बड़ा मजा आया, लेकिन उसका अंजाम कुछ नहीं निकला, ना तो तुम भाग पाई और ना ही तुम मर पाई, यहां तक कि तुम बचकर वापस मेरे पास आ गई हो, इसीलिए अब मरते दम तक तुम यहीं रहोगी मेरी कैद में। लेकिन जहां तक बात रही उस डॉक्टर की, उसकी सजा भी बाकी है और मैं उसे अपने तरीके से सजा दूंगा। अरुणिमा डरते हुए आस्तिक को देखने लगती है। आस्तिक मुस्कुराते हुए अरुणिमा के पास आता है और कहता है, देखना चाहोगी तुम्हारी वो सखी सहेली तुम्हारी वजह से किस हालत में पहुंच गई है? अरुणिमा के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में इस बात का डर साफ दिख रहा था कि आस्तिक ने जरूर कुछ बुरा किया है। आस्तिक ने अपना फोन निकाला और अगले ही पल नीरज को कॉल कर दिया। नीरज ने कॉल उठाया, उसका चेहरा स्क्रीन पर नजर आया। आस्तिक ने उसे देखते हुए कहा, नीरज जरा मुझे डॉक्टर साहिबा का चेहरा तो दिखाओ। ओके बॉस, नीरज ने कहा। नीरज अपने फोन की स्क्रीन को कहीं और लेकर जाने लगा। अरुणिमा डरते हुए फोन स्क्रीन को देख रही थी। स्क्रीन पर एक अजीब सी जगह दिख रही थी। वहां चारों तरफ खून के धब्बे थे और रोशनी बहुत कम थी। जगह जगह दीवारों पर इंसानों के अंग लटके हुए थे जिन्हें जंजीरों से बांधा गया था। जैसे जैसे नीरज उस गलियारे से कमरे की ओर बढ़ रहा था, अरुणिमा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो जगह किसी नरक से कम नहीं लग रही थी। नीरज ने एक दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हुआ। अरुणिमा की नजरें स्क्रीन पर जम गईं। उसने देखा कि एक कमरे में कुर्सी से बांधकर निशा को रखा गया है। उसके चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे। उसे जंजीरों से इस कदर बांधा गया था कि उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन वो अब भी जिंदा थी क्योंकि उसकी सांसें चल रही थीं। वो तड़पते हुए अपना चेहरा इधर उधर हिलाने की कोशिश कर रही थी। निशा को इस हालत में देखकर अरुणिमा कांप उठी। वो आस्तिक से गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं आस्तिक, प्लीज उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज उसे जाने दो। आस्तिक उसकी हालत देखकर मुस्कुराया और बोला, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो सबको लगेगा मैं हार गया हूँ, क्योंकि मैंने उसे सजा नहीं दी जिसने मेरी बीवी को भागने में मदद की। उसे छोड़ना तो नामुमकिन है, लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए एक फेवर कर सकता हूँ। अरुणिमा डरते हुए आस्तिक को देखने लगी। आस्तिक हंसते हुए बोला, माफिया की कुर्सी के लिए मुझे वारिस चाहिए, तुम मेरा बच्चा पैदा करो और मैं तुम्हारी दोस्त को छोड़ दूंगा। अरुणिमा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी।
उसके जवाब पर आस्तिक की तिरछी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने फोन स्क्रीन की तरफ देखा और नीरज से कहा, नीरज शूट है।